अष्ट के दूसरा भाग बगैर विदाउट जुर्म क्राइम अन्य दूसरा सीना जोरी ऑडासिटी पोल खोलना टू एक्सपोज टू रिवील अ सीक्रेट बिगाड़ना टू हार्म टू स्पॉयल धोखा देना टू डिसीव मिलावट एडल्ट्रेशन जनता पब्लिक लोग जहर पॉइजन विष लीडरी झाड़ना टू प्रीच लाइक अ लीडर झूठा आरोप लगाना टू एक्यूज ऑन फॉल्स ग्राउंड बेइज्जती करना टू इंसल्ट नतीजा रिजल्ट परिणाम पक्का सबूत सॉलिड प्रूफ आखिरी लास्ट थाना पुलिस स्टेशन फर्क पड़ना टू मेक अ डिफरेंस गप्पे हाँकना टू गॉसिप के अलावा अपार्ट फ्रॉम इन एडिशन टू निठल्ला आइडल बेकार जेब कतरा पिक पॉकेट काश an expression of sorrow jeb kaatna to pick a pocket to cheat parangat hona to be an expert tay karna to decide parivahan transport jurmana penalty ada karna to make payment kaid imprisonment gawai witness meherbani kindness saza punishment pakadwana to get arrested bura bhala kehna to abuse maza chakhana to teach a lesson sharif lagana to look like a gentleman खानदानी शरीफ जेंटलमैन बाय बर्थ बटुआ पर्स बस टिकट दूसरा भाग कंडक्टर अन्य यात्रियों से आपका टिकट हो गया आपका और किसी साहब को टिकट लेना है मनोहर से आपका टिकट हो गया साहब मनोहर नहीं कंडक्टर तो साहब आप बोलते क्यों नहीं मनोहर जब मुझे टिकट लेना ही नहीं है तो क्यों बोलूं कंडक्टर आप बगैर टिकट सफर करना चाहते हैं मनोहर हाँ कंडक्टर मालूम है बगैर टिकट सफर करना जुर्म है मनोहर मालूम है कंडक्टर फिर क्या मर्जी है मनोहर कुछ नहीं आराम से बैठे हैं कंडक्टर बगैर टिकट आप बस में नहीं बैठ सकते मनोहर बैठ सकता हूँ पैरा 8 लाला जी जरा देखो तो चोरी और सीना जोरी मनोहर लाला जी आपकी चोरी मैंने खूब देखी है आपके पड़ोस में ही रहता हूँ मेरे बीच में मत बोलो नहीं तो सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा लाला जी अरे जाओ तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा शर्म नहीं आती तुम्हें बगैर टिकट सफर करने में सरकार को धोखा देना चाहते हो मनोहर धोखा मैं नहीं तुम देते हो मसाले में मिलावट घी में मिलावट करके जनता को जहर खिलाते हो और ऊपर से लीडरी झाड़ते हो। लाला जी, देखो जी, तुम मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हो, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मनोहर, वह तो बाद में देखा जाएगा। लाला जी, तुम्हारे खिलाफ मैंने पक्के सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, अब एक दिन पुलिस को लेकर आने वाला हूं, तैयार रहना। लाला जी, हाँ हाँ, ले आना पुलिस को, देख लूंगा पुलिस को और तुम्हें भी। तारा 9, कंडक्टर मनोहर से, मैं आखिरी बार कहता हूँ साहब, आप टिकट ले लीजिए वरना मुझे बस थाने ले जानी पड़ेगी। मनोहर, शोक से ले चलो। बाबूजी, मनोहर से, मिस्टर क्यों झगड़ा करते हो? बस थाने जाएगी तो हमको दफ्तर को देर हो जाएगी। मनोहर, देर हो जाएगी तो आपको क्या फर्क पड़ेगा बाबूजी, वहां कौन सा आप काम करते हैं? बाबूजी, काम नहीं करता तो क्या करता हूं? मनोहर, सब जानता हूं, दिन भर चाय पीने और गप्पे हांकने के अलावा आपको और क्या काम रहता है? लाला जी, सबको अपनी ही तरह निठल्ला समझते हो। मनोहर, आपको नहीं लाला जी, आप तो 2400 घंटे लोगों की जेब काटने में लगे रहते हैं, यह मैं जानता हूं। लाला जी, बिगड़ कर ए जबान संभाल कर बात करो, जेब कतरे होगे तुम। मनोहर, काश कि मैं भी इसी विद्या में पारंगत होता। पैरा 10, कंडक्टर साहब, आप लोग इस झगड़े को बाद में तय कर लेना, पहले टिकट की बात कीजिए, वह देख लीजिए, बस में नोटिस लगा है, दिल्ली परिवहन को बसों में बिना टिकट सफर करना जुर्म है। मनोहर, बात काट कर, और टिकट न लेने पर 50 रुपए तक जुर्माना हो सकता है, जिसे अदा न करने पर 15 दिन की कैद भी हो सकती है, यह मैं जानता हूं। तो कंडक्टर महाराज, तुमसे जो हो सके कर लो, मैंने एक बार कह दिया कि मुझे टिकट नहीं लेना है, बस बात खत्म हो गई। कंडक्टर, बात खत्म कैसे हो गई? बात तो अब शुरू होगी, चल लीजिए, थाना भी आ गया। कंडक्टर घंटी देकर बस रुकवाता है। पैरा 11, कंडक्टर उतरी है साहब। मनोहर, बड़े शौक से। कंडक्टर, लाला जी आप भी अगर गवाही के लिए साथ चलें तो बड़ी मेहरबानी होगी। लाला जी, जरूर जरूर, ऐसे लोगों को जरूर सजा दिलवानी चाहिए। कंडक्टर, बाबूजी आप भी चलिए। बाबूजी घबरा कर, क्यों, हमको क्यों पकड़वाता है? हम तो पूरा टिकट लिया है। कंडक्टर, नहीं बाबूजी, आपको क्यों पकड़ाऊंगा? बाबूजी, फिर हमको क्यों साथ चलने को कहता है? कंडक्टर, इन साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए। बाबूजी, नहीं बाबा, हम झगड़े में नहीं पड़ता। मनोहर, चलिए भी बाबूजी, तमाशा देखिएगा, साथ ही आज की तारीख में आपको कुछ काम करने को मिल जाएगा। लाला जी, बाबूजी आपको जरूर गवाही देनी चाहिए, इन साहब ने आपको भी बुरा भला कहा था, उसका मजा तो चखाना चाहिए इन्हें। बाबूजी, हाँ हाँ, वह तो है, कहता था हम दफ्तर में कुछ काम नहीं करता, अब हम बताएगा क्या काम करता है। चलो तीनों जाते हैं। पैरा 12। कंडक्टर, थानेदार साहब, ये साहब बस में बिना टिकट सफर कर रहे हैं। थानेदार, ये तीनों आदमी? बाबूजी घबराकर, नहीं नहीं, हमने तो पूरा टिकट लिया है। कंडक्टर, नहीं थानेदार साहब, यह बाबूजी और लाला जी गवाही के लिए हैं, टिकट इन तीसरे साहब ने नहीं लिया। थानेदार मनोहर से, देखने में तो शरीफ लगते हो। मनोहर, खानदानी शरीफ हूँ। लाला जी, क्या कहने हैं, तभी तो टिकट नहीं लिया। थानेदार मनोहर से, क्यों साहब, आपने टिकट नहीं लिया? मनोहर, जी नहीं। थानेदार, आप जानते हैं टिकट न लेना जुर्म है। मनोहर, खूब अच्छी तरह। थानेदार, जेब में पैसे नहीं हैं? मनोहर, बटुआ भरा हुआ है। थानेदार, देखिए साहब, आप अब भी टिकट ले लें तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। मनोहर, छूट तो मैं बगैर टिकट के भी जाऊंगा। थानेदार, कैसे? मनोहर, यह देखिए मेरे पास बस का पास है। थानेदार, कंडक्टर, लाला जी और बाबूजी एक साथ आश्चर्य से कहते हैं, ए कंडक्टर, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मनोहर, तुमने पूछा ही कब था? पूछते तो बता देता कि मेरे पास बस का पास है। दो पुराने मित्र, आगे बढ़ना, टू मूव अहेड। वजन, वेट, भार। की ओर, टुवर्ड्स, की तरफ। बार बार, टाइम एंड अगेन। चौरंगी, अ मार्केट प्लेस इन कैलकटा। रवाना होना, टू डिपार्ट, टू मूव आउट। चित्र, पिक्चर, उतना ही, दैट मच, इक्वली। कद, हाइट। रुचि, इंटरेस्ट। शरारती, मिस्चीवियस। दुबला, वीक, लीन, कमजोर। मुक, फूल। याद आना, टू रिकलेक्ट, टू रिमेम्बर। फौजी अफसर, मिलिट्री ऑफिसर। मजाक उड़ाना, टू मेक फन ऑफ, टू मॉक। चौंकना, टू बी टेकन अबैक। ईर्षा, एनवी। बहरा, वेटर। मस्त, केयरफ्री। वर्दी, ड्रेस, यूनिफॉर्म। झुकना, टू बेंड। दो पुराने मित्र, सरला ने बाजार से बहुत सी चीजें खरीदी। रमेश उन्हें उठाकर आगे बढ़ने लगा। वह सोचने लगा, सरला ने आज बहुत पैसे खर्च किए हैं। क्या वजन बहुत हो गया? सरला ने पूछा। जी नहीं, जी नहीं, रमेश ने कहा। सरला अब एक दुकान में खड़ी हो गई। रमेश ने उसकी ओर देखा, वो बहुत सुंदर लग रही थी। पिछले 2 सालों में उसने सरला को कई बार देखा है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें बार बार उसे देखना चाहती थीं। चलो अब चलते हैं, सरला ने कहा। रमेश ने सामान कार के पिछली सीट पर रख दिया, फिर कहा, मुझे चौरंगी में कुछ काम है, क्या मैं वहां हुआ हूं? सरला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। यह कहकर उसने कार स्टार्ट की और रवाना हो गई। तभी रमेश ने देखा कि उसके सामने एक लंबा सा आदमी खड़ा है। रमेश सोचने लगा, यह कौन हो सकता है? मैं हूँ राममूर्ति। क्या भूल गए? ओ तुम आज इतने सालों के बाद मिल रहे हो। रमेश ने देखा राममूर्ति कितना स्वस्थ है। 6 फुट लंबा, गोरा रंग, टेरेलिन के सफेद पतलून। रमेश की आंखों के सामने एक पुराना चित्र आ गया। राममूर्ति और वह साथ साथ पढ़ते थे। राममूर्ति तब भी उतना ही सुंदर था। उसका कद लंबा था, लेकिन पढ़ने में उसकी रुचि नहीं थी। वह शरारती था। रमेश छोटा और दुबला था, लेकिन पढ़ने में होशियार था। तुम यहाँ क्या करते हो? मैं रामदास एंड कंपनी में काम करता हूँ। तुम कहाँ काम करते हो? मैं मार्टिन एंड कंपनी में काम करता हूँ, राममूर्ति हंसा। रमेश ने सोचा, यह मूर्ख इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है। उसे याद आया राममूर्ति के लंबे कद पर और उसकी शरारत को देखकर गुरुजी कहते थे, यह लड़का जरूर पुलिस अफसर या फौजी अफसर बनेगा। रमेश ने सोचा, सचमुच आज यह किसी अफसर से कम नहीं। जब रमेश छोटा था तो राममूर्ति उसका मजाक उड़ाता था। बचपन में राममूर्ति ने उसे कई बार रुलाया भी था। राममूर्ति के पिता धनी थे। स्कूल में इंटरवल में वह होटल में जाकर खाता था, लेकिन रमेश के पास पैसे नहीं होते थे। वह रमेश को देखकर हंसता था। रमेश को लगा आज भी वह उसका मजाक उड़ा रहा है। राममूर्ति ने हंसकर कहा, चलो कॉफी पीते हैं। रमेश ने जेब में हाथ डाला, वह चौंका। सामान खरीदते समय रमेश ने सरला से 100 रुपए का नोट लेकर दुकानदार को दिया था। दुकानदार ने रमेश को 10 रुपए वापस दिए थे। वे रुपए उसके जेब में थे। वह सरला को पैसे वापस देना भूल गया था। रमेश ने थोड़ी देर कुछ नहीं कहा, फिर घड़ी की ओर देखा। 7 बज रहे थे। राममूर्ति ने पूछा, तुम घड़ी क्यों देख रहे हो? क्या पत्नी नाराज हो जाएगी? नहीं, यह बात नहीं है। तुमने बहुत सुंदर स्त्री से शादी की है। तुमने उसे कब देखा? रमेश ने पूछा। अभी, जब तुम कार के पास खड़े होकर उससे बातें कर रहे थे। रमेश मुस्कुराया। राममूर्ति उससे ईर्ष्या कर रहा है, यह सोचकर उसे खुशी हुई। राममूर्ति आगे बढ़ा और पास खड़ी कार का दरवाजा खोलकर उसने कहा, बैठो। रमेश बैठ गया, लेकिन अब रमेश को उसकी कार देखकर ईर्ष्या हो रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी कार बहुत अच्छी है। हाँ, नए मॉडल की है। कार 5 मिनट में पार्क स्ट्रीट में आ गई। दोनों एक होटल में घुसे। वे दोनों सोफे पर बैठ गए। राममूर्ति ने बैरे से काफी, ऑमलेट और केक लाने को कहा। रमेश, तुम बहुत भाग्यवान हो। तुम स्कूल में पढ़ने में सबसे होशियार थे। मैं तभी सोचता था कि तुम जरूर बड़े आदमी बनोगे। क्या तुमसे भी बड़ा? अरे मेरा क्या है, यह कहकर राममूर्ति हंस दिया। रमेश ने सोचा, राममूर्ति आज भी कितना मस्त है। फिर उसने पूछा, क्या तुमने शादी नहीं की? नहीं, तुम्हारी तरह सभी भाग्यवान नहीं होते। तुमको बहुत सुंदर पत्नी मिली है। सभी का ऐसा भाग्य नहीं होता। बगैर बिल लेकर आया, बैरा बिल लेकर आया। रमेश ने सोच लिया था कि आज मैं ही पैसे दूंगा, अब तो राममूर्ति मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। रमेश ने 10 रुपए का नोट प्लेट पर रख दिया। दोनों बाहर आए। राममूर्ति ने कहा, चलो मैं तुमको घर छोड़ दूंगा। नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। मैं शाम को पैदल चलता हूँ। राममूर्ति कार में बैठ गया और कार आगे बढ़ गई। रमेश धीरे धीरे चौरंगी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसका मन अशांत था। सोच रहा था राममूर्ति के पास कार है, वो कितना बड़ा आदमी है, लेकिन राममूर्ति समझता है कि सरला मेरी पत्नी है। यह अंतिम बात सोचकर उसे संतोष हुआ, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने सरला के 10 रुपए खर्च कर दिए हैं। सरला रामदास एंड कंपनी के मालिक की पत्नी थी। अगर उसने अपने पति से कह दिया तो वे उसे नौकरी से निकाल देंगे। राममूर्ति ने सिनेमा हॉल के सामने कार रोक दी। उसने घड़ी देखी, 9:30 बज रहे थे। उसने सोचा कि अब फिल्म खत्म होने वाली है। उसने सिगरेट फेंक दी और कार के भीतर से अपनी खाकी वर्दी और टोपी निकाल कर पहन ली। फिल्म खत्म हो गई, साहब सिनेमा देखकर बाहर निकले। जब वे कार के पास पहुंचे तो राममूर्ति ने झुककर कार का दरवाजा खोल दिया। चतुर विदूषक। विदूषक जेस्चर, हाजिर जवाब, रेडी वेटेड, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट, बुढ़ापा, ओल्ड एज, अवश्य, सर्टन, अनुसार, अकॉर्डिंग टू, चुभने वाला, हर्टिंग, चरण, फीट, अचन, बुद्ध, कमिटेड। चतुर विदूषक। किसी राजा के दरबार में एक विदूषक था। वो बड़ा ही चतुर और हाजिर जवाब था। उसके उत्तर और मजाक से सभी दरबारियों का मनोरंजन होता था। वह राजा का प्रिय व्यक्ति था, इसलिए कभी कभी वह मंत्रियों और दरबारियों से चुभने वाला मजाक भी कर देता था। इसलिए कई लोग उससे नाराज हो गए थे। वे चाहते थे कि उसे दंड मिले, पर चूंकि राजा उससे प्रसन्न था, इसलिए कोई उसके विरुद्ध शिकायत नहीं करता था। वे इस अवसर की प्रतीक्षा में थे कि उसे कड़ा दंड मिले। एक बार उसने राजा से ही कुछ ऐसा मजाक कर दिया कि राजा बहुत नाराज हो गया। राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। विदूषक की आंखें अब खुली। वह राजा के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, महाराज, मुझे इस बार क्षमा कर दें, मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पर राजा को उस पर दया नहीं आई। उसने कहा, अपनी गलती के लिए तुम्हें मरना अवश्य पड़ेगा, पर किस तरह मरना चाहते हो इसका निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूँ। विदूषक चतुर था। वो बोला, महाराज की जय हो, आपने मरने का तरीका चुन लेने का अधिकार मुझे देकर बड़ी कृपा की है। राजा मुस्कुराया, हाँ, मैं वचन देता हूँ, बोलो तुम्हें किस तरह मरना पसंद है। मैं बुढ़ापे से मरना पसंद करूंगा। राजा वचनबद्ध था। उसने विदूषक को मुक्त कर दिया। पंडित जी और 3 ठग। सेठ, रिच मैन, दान में एस ए गिफ्ट, धोखे में आना, टू बी बिग्वेल्ड, पालना, टू रेयर टू टेम, बड़बड़ाना, टू मटर, ठग लेना, टू चीट, योजना, प्लान, शंका, डाउट, धार्मिक, रिलीजियस, शोभा देना, टू बिहोव, yajman, a person who gets the rites performed. पंडित जी और तीन ठग। एक बार एक पंडित जी किसी सेठ के घर पूजा करने कराने पास के गांव में गए। सेठ ने पंडित जी को दान में एक बछड़ा दिया। पंडित जी बड़े खुश हुए, उसे कंधे पर रख कर वे वापस अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में दूर से उन्हें तीन ठगों ने देख लिया। उन्होंने पंडित जी से बछड़ा ठग लेने की योजना बना ली। एक ठग सामने आकर बोला, नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, आपको कुत्ता पालने का शौक कब से हो गया? क्या मतलब है भाई तुम्हारा, पंडित जी ने कहा, यह कुत्ता कंधे पर उठाए कहाँ जा रहे हो आप? पंडित जी नाराज होकर बोले, तुम्हें नहीं दिखता कि यह बछड़ा है? पंडित जी बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर दूसरा ठग मिला। वो बोला, प्रणाम पंडित जी, आपका कुत्ता तो बड़ा सुंदर है, कहाँ से ला रहे हैं? रास्ते में कुत्ता अच्छा साथी होता है। पंडित जी फिर नाराज हो उठे, भाई तुम क्या कह रहे हो? धनपुर के सेठ ने मुझे यह बछड़ा दान में दिया है, आपको धोखा दिया है। यह कुत्ता दिखता तो बछड़ा जैसा है ही है, पर है कुत्ता और है भी बड़ा प्यारा। पंडित जी फिर आगे बढ़ गए। अब उनके मन में शंका होने लगी। थोड़ी दूर जाने पर तीसरा ठग मिला। बोला, पंडित जी, आप इतने धार्मिक व्यक्ति होकर कुत्ते को कंधे पर उठाए चलते हैं, यह तो आप जैसे विद्वान पंडितों को शोभा नहीं देता। पंडित जी को अब पूरा विश्वास हो गया कि वह बछड़ा नहीं कुत्ता है। वे उसे वहीं छोड़कर यजमान को गाली देते हुए आगे बढ़ गए। जैसे को तैसा, नाई बाबर चलाक कनिंग लकड़हारा वुडकटर जलाऊ लकड़ी फायरवुड काठी वुडन कंटेनर और फ्रेम सुझाव सजेशन लदना टू बी लोडेड जैसे को तैसा टिट फॉर टैट कहे अनुसार एज सेड आग बबूला होना टू गेट एनरेज्ड कीमत तय करना टू सेटल द प्राइस राजी होना टू एग्री टू मोल तोल बार्गेन हजाम बार्बर पेशगी एडवांस। जैसे को तैसा, बहुत पुरानी बात है, दिल्ली में करीम नाम का एक नाई था। वो बड़ा चालाक था। एक बार हसन नामक एक लकड़हारा अपने गधे पर लकड़ी लाद कर लाया। करीम ने पूछा, ओ भाई लकड़ी वाले, ये सारी लकड़ियां कितने में बेचोगे? लकड़हारे ने कहा, 1 रुपए में। नाई ने कहा, ठीक है, सारी लकड़ी दुकान के सामने डाल दो। लकड़ी उतारने में करीम उसकी मदद करने लगा। उसने लकड़ियों के साथ लकड़ी लादने की काठी भी उतार ली। लकड़हारे ने कहा, साहब यह तो लकड़ी रखने की काठी है, उसे ना लीजिए। पर मैंने तो गधे पर रखी सारी लकड़ी की कीमत तय की थी और तुम राजी भी हो गए थे। पर यह कैसे हो सकता है, मैंने तो जलाऊ लकड़ी ही बेची है, काठी तो लकड़ियां रखने के लिए है, लकड़ियों के साथ काठी का मोल तोल नहीं हो सकता। हसन ने क्रोध से कहा, पर मैंने गधे पर की सारी लकड़ियों का भाव किया था और तुम राजी हो गए थे। यह कहकर करीम ने काठी भी रख ली और लकड़हारे को भगा दिया। बेचारा लकड़हारा रोता पीटता काजी के पास गया। काजी ने उसका उसकी सारी बात सुनी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसी के अनुसार तुम करो। काजी के कहे अनुसार एक दिन लकड़हारा करीम की दुकान में जाकर बोला, भाई मैं बाल बनवाना चाहता हूँ, कितने पैसे लोगे? सिर्फ 25 पैसे, बैठिए कुर्सी पर, करीम बोला। करीम ने हसन के बाल काट दिए। हसन ने कहा, बाहर मेरा साथी है, उसके भी बाल काटने हैं, यह लीजिए 50 पैसे, हम दोनों के बाल काटने के। आपने साथी को अंदर भेज दीजिए, मैं ही साथ ले आता हूँ। यह कहता हुआ हसन बाहर गया और अपने गधे को अंदर ले आया। हसन बोला, यह है मेरा साथी, इसके बाल काट दो। करीम गधे को देखते ही आग बबूला हो गया, चीखते हुए बोला, क्या तुमने मुझे गधों का हजाम समझ रखा है? आप गधों के हजाम हैं या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, पर आपने इसके बाल काट बनाने के लिए पेशगी ले ली है। हसन ने शांतिपूर्वक कहा, पर तुमने तो कहा था कि मेरा साथी है। जी हाँ, मैंने कहा था, यह मेरा साथी है, आपको इसके बाल काटने पड़ेंगे। आदमी के साथी का मतलब आदमी हो सकता है, गधा नहीं। तब लकड़ी का मतलब जलाऊ लकड़ी है, लकड़ी से बनी काठी नहीं। करीम इस पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने हसन की काठी वापस कर दी।